एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार और स्वागत है एक और ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सचमुच क्रांतियों को हवा दी और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई एक समाज में आजादी का असली मतलब है क्या।
हाँ, हम बात कर रहे हैं जीन जैक्स रूसो की किताब सामाजिक समझौता या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। 1762 में आई थी ये।
बिल्कुल। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई पुरानी 250 साल पुरानी किताब है तो आज क्या काम की। अरे, इसके सवाल तो आज भी उतने ही ताजा हैं, उतने ही जरूरी।
सही कहा। कैसे रहें हम एक समाज में जहां सबकी अपनी अपनी मर्जी है, फिर भी एक व्यवस्था, एक ऑर्डर बना रहे।
और ये सरकार, इसे असली ताकत कहां से मिलती है? क्या राजा के खून से, या भगवान के नाम से, या फिर डंडे के जोर से?
और क्या जो हमें आजादी लगती है वो वाकई आजादी है या कुछ और?
सही कहा। रूसो का कहना था कि देखो भाई, असली पॉलिटिकल ताकत ना वो इनमें से कहीं नहीं होती।
बिल्कुल, वो आती है सिर्फ और सिर्फ एक समझौते से, एक कॉन्ट्रैक्ट से।
हाँ, एक ऐसा समझौता जो समाज के सारे सदस्य, हम सब मिलकर करते हैं।
क्यों?
अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भलाई के लिए।
और यही वो आइडिया था जिसने, अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर दुनिया भर के डेमोक्रेसीज की नींव में एक अहम भूमिका निभाई।
तो चलिए आज इसी समझौते के पन्ने पलटते हैं जरा गहराई से।
लेकिन इस क्रांतिकारी विचार को समझने से पहले इसके पीछे जो इंसान है उसे जानना भी बड़ा दिलचस्प है। जॉर्ज जाक्स रूसो।
हाँ, 1712 में जिनेवा में पैदा हुए। और सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, वो राइटर भी थे, म्यूजिशियन भी थे।
और उनका व्यक्तित्व भी, मतलब, काफी जटिल था। वो उस दौर के थे जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, ज्ञानोदय।
हाँ, पर मजे की बात यह है कि जहां बाकी विचारक तर्क, रीजन, साइंस की बातें कर रहे थे,
रूसो अक्सर प्रकृति, इमोशंस और इंसान की जो एक स्वाभाविक अच्छाई होती है ना, उसके गुण गाते थे।
बिल्कुल, ये एक तरह का विरोधाभास है। वो एनलाइटनमेंट के स्टार थे लेकिन उसके बड़े क्रिटिक भी।
हाँ, और उनका जन्म जिनेवा में हुआ था जो एक रिपब्लिक था, तो वहां जो नागरिकों की भागीदारी का मॉडल था, कम से कम कागज पर, उसका असर उनके विचारों पर साफ दिखता है।
उनकी एक पिछली किताब थी असमानता की उत्पत्ति पर विमर्श। उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे समाज, खासकर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसने इंसान को उसकी नेचुरल अच्छाई से दूर कर दिया है, लालची बना दिया है, भ्रष्ट बना दिया है।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो किताब समस्या बताती है।
हाँ।
और सामाजिक समझौता उसका हल सुझाने की कोशिश करती है।
अच्छा।
रूसो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जो लॉजिक पर आधारित हो, पर उसमें इंसानी जज्बात, वो कलेक्टिव स्पिरिट, उसकी भी जगह हो।
ये अनोखा मेल ही शायद उनके विचारों को इतनी ताकत देता है।
बिल्कुल। तो आते हैं इस किताब पर, सामाजिक समझौता। इसका मकसद ये बताना नहीं था कि सरकारें असल में प्रैक्टिकली कैसे चलती हैं।
हाँ, वो तो रूसो को भी पता था कि गड़बड़ झाला होता है।
बिल्कुल। बल्कि ये सोचना था कि एक न्यायपूर्ण, एक सही, मतलब लेजिटिमेट सरकार, वो कैसी होनी चाहिए।
तो ये किताब उन लोगों के लिए थी जो सोचते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या नेता, कि भाई अधिकार, आजादी, न्याय, इनका असली मतलब क्या है।
उनका सबसे बड़ा आइडिया, या कहें कि केंद्रीय तर्क, ये था कि देखो, असली आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन में आए करते फिरें बेलगाम।
नहीं तो फिर क्या है?
असली आजादी है उन कानूनों को मानना, उन नियमों को मानना, जिन्हें हमने समाज के एक सदस्य के तौर पर खुद अपने लिए बनाया है।
अच्छा, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में कि कानून मानना आजादी कैसे हुई।
हाँ, पर यही उनके तर्क का सार है। हम इस पर और बात करेंगे।
किताब शुरू होती है पुराने तर्कों को, पुरानी जस्टिफिकेशंस को खारिज करने से, जैसे राजा का डिवाइन राइट कि उसे भगवान ने भेजा है राज करने।
रूसो कहते हैं बकवास।
या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट।
वो कहते हैं ये ताकत हो सकती है पर अधिकार नहीं, लेजिटिमेसी नहीं।
और गुलामी, स्लेवरी,
पूरी तरह नाजायज। रूसो का तर्क है कि कोई भी इंसान स्वेच्छा से अपनी आजादी छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आजादी तो इंसान होने का हिस्सा है, इसे आप छोड़ नहीं सकते।
सही बात है।
तो इन सब को नकारने के बाद रूसो कहते हैं कि सरकार का सिर्फ एक ही सही आधार हो सकता है, एक ही लेजिटिमेट बेसिस।
और वो क्या है?
एक स्वैच्छिक समझौता, वॉलंटरी अग्रीमेंट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
यानी सब लोग मिलकर तय करते हैं कि हाँ, हम अपनी कुछ प्राकृतिक आजादी, वो जंगल वाली आजादी छोड़ेंगे,
ताकि हमें एक समाज में सुरक्षा मिल सके और नागरिक आजादी मिल सके, सिविल लिबर्टी।
और इसी समझौते से बनता है एक पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक शरीर, जिसे रूसो कहते हैं संप्रभु, सॉवरेन।
हाँ, और ये संप्रभु कौन है? ये कोई राजा या पार्लियामेंट नहीं है, ये असल में सभी नागरिकों का सामूहिक रूप है। हम सब मिलकर संप्रभु हैं।
अच्छा,
और ये संप्रभु चलता कैसे है? चाहे जिसका लक्ष्य हमेशा सबकी भलाई होता है, कॉमन गुड।
तो चलिए, अब किताब की जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा और खोलते हैं, चैप्टर दर चैप्टर रटने के बजाय इसके मूल प्रवाह को, इसके लॉजिक को समझते हैं।
बिल्कुल। सबसे पहले रूसो उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं जिसकी वजह से ये समझौता, ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी हुआ।
हाँ, वो शुरुआत ही करते हैं अपनी उस बेहद मशहूर लाइन से, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वो जंजीरों में झगड़ा हुआ है
ना, कमाल की लाइन। ये जंजीरें कौन सी हैं? ये समाज के बनाए नियम है, असमानता है, वो व्यवस्थाएं हैं जो इंसान की जो नेचुरल फ्रीडम है उसे छीन लेती हैं।
रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में, इंसान शायद ज्यादा खुश था, सिंपल था, लेकिन अकेला था,
इनसिक्योर था।
हाँ, अपने दम पर सर्वाइव करना मुश्किल था, तो समाज बनाना जरूरी हो गया। यहीं पर आता है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई कागजी दस्तावेज नहीं है, जरूरी नहीं कि हो, बल्कि एक तरह की समझ है, एक अग्रीमेंट है।
समझौता क्या है?
रूसो के शब्दों में कहें तो करीब करीब ऐसा कि हम में से हर एक अपना व्यक्तित्व और अपनी सारी शक्ति उसे कॉमन रखता है, सामान्य इच्छा के सुप्रीम डायरेक्शन के तहत।
और बदले में?
बदले में हम अपनी सामूहिक क्षमता में हर सदस्य को पूरे का एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं। मतलब हम अपनी थोड़ी इंडिविजुअल ताकत और मर्जी एक कलेक्टिव विल के हवाले करते हैं,
और बदले में उस कलेक्टिव ताकत का उस समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन पाते हैं।
बिल्कुल। और इसी लेन देन में छिपा है वो आइडिया जो सबसे ज्यादा चौंकाता है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस भी हुई है, स्वतंत्र होने के लिए मजबूर,
फोर्स्ड टू बी फ्री।
ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है, कोई मजबूर होकर आजाद कैसे हो सकता है भला?
रूसो का तर्क थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि जब आप समाज का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए तो आपने उस सामान्य इच्छा को मानने का भी वादा किया जो सबकी भलाई के लिए है।
ठीक है,
अब अगर कभी आपका निजी स्वार्थ, आपकी पर्सनल इच्छा, उस सामान्य इच्छा के खिलाफ जाए तो समाज आपको उस सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है।
लेकिन ये तो जबरदस्ती हुई ना?
रूसो कहते हैं नहीं, ऐसा करके समाज आपको आपकी ही निचली इच्छाओं से, आपके फौरी स्वार्थ से आजाद कर रहा है, ताकि आप अपनी हायर, अपनी नागरिक स्वतंत्रता पा सकें, वो स्वतंत्रता जो आपने खुद चुनी थी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त।
अच्छा, जैसे मान लीजिए हम सब मिलकर तय करते हैं कि ट्रैफिक लाइट लाल होने पर रुकना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, ये सामान्य इच्छा है। अब अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं निकल जाऊं तो पुलिस मुझे रुकने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल। और ऐसा करके वो आपको आपकी उस जल्दबाजी वाली खतरनाक इच्छा से आजाद कर रही है और उस बड़ी स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है जो हम सबको सुरक्षित सड़कों से मिलती है।
तो ये प्राकृतिक आजादी जो मनचाहे करो और छोड़कर, नागरिक आजादी, कानून के दायरे में मिली आजादी, और नैतिक आजादी, खुद बनाए नियमों को मानना।
एग्जैक्टली। नैतिक आजादी यानी आप खुद के बनाए कानून के मालिक हैं। ये बहुत बड़ा गेन है रूसों के हिसाब से।
ठीक है, ये समझौता हो गया, इससे बना संप्रभु यानी सभी नागरिकों का कलेक्टिव रूप। अब सवाल है ये संप्रभु काम कैसे करेगा? यहाँ आता है रूसो का दूसरा बड़ा आइडिया, सामान्य इच्छा,
जनरल विल।
हाँ,
ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ठीक से समझना जरूरी है। ये सबकी व्यक्तिगत इच्छाओं का जोड़, विल ऑफ ऑल नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है? जैसे चुनाव में सारे वोट जोड़ दें, वो नहीं है?
नहीं, वो तो सबकी इच्छा हुई। रूसो कहते हैं सामान्य इच्छा वो है जो सबके भले के लिए हो, कॉमन गुड के लिए।
ये पता कैसे चलेगा कि कॉमन गुड क्या है?
रूसो का मानना था, शायद थोड़ा आदर्शवादी होकर, कि अगर नागरिक ईमानदारी से, बिना किसी ग्रुपबाजी के, बिना पर्सनल फायदे का सोचें, सिर्फ ये सोचें कि पूरे समाज के लिए क्या अच्छा है,
तो उनकी जो अलग अलग व्यक्तिगत इच्छाओं के प्लस माइनस हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
ओके।
और जो बचेगा, जो सबका कॉमन इंटरेस्ट होगा, वही सामान्य इच्छा होगी।
अच्छा,
तो ये हमेशा सही होती है
रूसो के अनुसार? हाँ, सामान्य इच्छा हमेशा सही होती है और हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट का लक्ष्य रखती है, और कानून, लॉ, तभी सही है, तभी लेजिटिमेट है जब वो इस सामान्य इच्छा को रिफ्लेक्ट करे।
और क्योंकि ये सामान्य इच्छा सबकी कलेक्टिव इच्छा है, इसलिए सॉवरेनिटी यानी कानून बनाने की सुप्रीम पावर वो ना तो किसी और को सौंपी जा सकती है,
जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स को,
रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ज्यादा करीब थे,
और न ही बांटी जा सकती है जैसे सरकार की अलग अलग ब्रांचेस में।
पावर का असली सोर्स हमेशा लोग ही रहते हैं कलेक्टिवली।
बिल्कुल। अब एक बहुत जरूरी फर्क जो रूसो करते हैं संप्रभु सॉवरेन और सरकार गवर्नमेंट के बीच।
हाँ, ये क्या है?
संप्रभु कौन है? सभी नागरिक मिलके जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटिव पावर।
ठीक।
सरकार कौन है? वो लोग या वो बॉडी जैसे राजा या कैबिनेट जिन्हें संप्रभु ने कानून लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए नियुक्त किया है, एग्जीक्यूटिव पावर।
तो सरकार सिर्फ एक एजेंट हुई?
सरकार सिर्फ एक नौकर है, संप्रभु का एजेंट है, उसे बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, मालिक तो हमेशा संप्रभु यानी जनता ही रहेगी।
ये तो बड़ा रेडिकल विचार था उस वक्त के हिसाब से।
हाँ, और रूसो लगातार चेतावनी देते हैं कि सरकार की हमेशा ये टेंडेंसी रहती है, ये कोशिश रहती है कि वो मालिक बन बैठे, वो संप्रभु की पावर हड़प ले।
ये तो आज भी दिखता है कई बार।
बिल्कुल। इसी खतरे से बचने के लिए रूसो कहते हैं कि नागरिकों को लगातार एक्टिव रहना होगा, विजिलेंट रहना होगा।
कैसे?
उन्हें नियमित रूप से सभाओं में, असेंबलीज में मिलना होगा, जहां वे सीधे तौर पर कानूनों पर वोट करें, सरकार के काम का रिव्यू करें और उस ओरिजिनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फिर से कंफर्म करें।
और इन सभाओं के दौरान?
इन सभाओं के दौरान रूसो कहते हैं सरकार की शक्ति सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि मालिक यानी संप्रभु वो खुद मौजूद है।
अच्छा, उन्होंने अलग अलग तरह की सरकारों पर भी बात की है ना, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी।
हाँ, की है। डेमोक्रेसी जहाँ सब लोग सीधे शासन करें, उसे वो आइडियल मानते थे पर इंसानों के लिए प्रैक्टिकल नहीं मानते थे। कहते थे ये तो देवताओं के लिए उपयुक्त सरकार है।
हाँ हाँ, सही है।
एरिस्टोक्रेसी जहाँ कुछ गुणी लोग शासन करें, इसे वे सबसे ठीक मानते थे, खासकर अगर वो चुने हुए हों, इलेक्टिव एरिस्टोक्रेसी।
और मोनार्की, राजतंत्र?
उसकी वे कड़ी आलोचना करते थे, कहते थे इसमें तानाशाही का, भ्रष्टाचार का बहुत खतरा रहता है। कौन सी सरकार बेस्ट है, ये देश के साइज, कल्चर, लोगों के कैरेक्टर पर निर्भर करता है, कोई एक फॉर्मूला सबके लिए नहीं है।
ठीक है। और आखिर में वो एक और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा उठाते हैं, धर्म का, सिविल रिलीजन।
हाँ, नागरिक धर्म। उनका मानना था कि समाज को जोड़ने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है, एक साझा नैतिक आधार, एक मॉरल फाउंडेशन भी चाहिए। वो उस समय के मौजूदा धर्मों, खासकर ईसाई धर्म की आलोचना करते हैं। कहते हैं कि ये लोगों की लॉयल्टी बांट देता है चर्च और स्टेट के बीच, या फिर लोगों को इस दुनिया से उदासीन बना देता है।
तो फिर हल क्या है?
वो एक नागरिक धर्म का प्रस्ताव रखते हैं जिसके सिद्धांत बहुत सिंपल हों, एक दयालु ईश्वर में विश्वास रखो, मरने के बाद अच्छे कामों का इनाम मिलेगा, बुरों को सजा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कानूनों की पवित्रता मानो, और सबसे जरूरी, किसी भी तरह की धार्मिक असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, उसे बिल्कुल बर्दाश्त मत करो।
तो इसका मकसद मोक्ष पाना नहीं है?
नहीं, इसका मकसद परलोक सुधारना नहीं, बल्कि इसी दुनिया में अच्छे नागरिक बनाना और सोशल हार्मनी, सामाजिक एकता बनाए रखना था। ये भी बहुत रेडिकल बात थी उस समय के लिए।
वाह, वाकई काफी कुछ है इस छोटी सी किताब में। अगर हमें इसके निचोड़ को, इसके एसेंस को कुछ मुख्य संदेशों में बांधना हो तो क्या कहेंगे?
मेरे लिए सबसे पहले आता है लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी।
हाँ,
यानी असली मालिक जनता है, कोई राजा या नेता या पार्टी नहीं। सरकार जनता की नौकर है, एजेंट है। ये आज भी कितना जरूरी विचार है ना।
बिल्कुल। दूसरा शायद सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल।
हाँ, कि कानून और नीतियां सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके साझे भले, कॉमन गुड पर आधारित होनी चाहिए।
ये हमें आज की पॉलिटिक्स पर सोचने को मजबूर करता है। क्या हमारी सरकारें, हमारी नीतियां वाकई आम भलाई के लिए बन रही हैं, या कुछ खास लॉबीज, कुछ खास ग्रुप्स के फायदे के लिए?
तीसरा, वो कानून के जरिए स्वतंत्रता वाला आइडिया, और वो स्वतंत्र होने के लिए मजबूर वाला बात।
हाँ, वो थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है,
पर वो हमें सिखाता है कि सच्ची आजादी मनमानी नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन है, उन नियमों का पालन करना जिन्हें हमने खुद कलेक्टिवली सही माना है। ये पर्सनल लेवल पर भी लागू होता है। क्या हम अपनी बुरी आदतों पर काबू पाकर ज्यादा स्वतंत्र महसूस नहीं करते?
सही पॉइंट है। चौथा, वो संप्रभु और सरकार का फर्क।
बिल्कुल, ये एक वार्निंग है कि सरकार पर हमेशा नजर रखनी चाहिए क्योंकि पावर करप्ट करती है।
और नागरिकों की एक्टिव भागीदारी ही डेमोक्रेसी को जिंदा रख सकती है। सिर्फ वोट डाल देना काफी नहीं है।
नहीं, हमें सवाल पूछने होंगे, इन्वॉल्व होना होगा, चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा।
और पांचवा,
समानता और नागरिक सद्गुण का महत्व। रूसो मानते थे कि बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी समाज को तोड़ देती है।
क्यों?
क्योंकि तब अमीर गरीबों को खरीद सकते हैं और गरीब खुद को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, फ्रीडम खत्म हो जाती है। और एक हेल्दी रिपब्लिक के लिए नागरिकों में सिविक वर्चू यानी देश प्रेम और पब्लिक इंटरेस्ट को प्राइवेट इंटरेस्ट से ऊपर रखने की भावना होनी चाहिए। इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है।
रूसो की भाषा भी बड़ी दमदार है। कुछ लाइंस तो ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे वो शुरुआत वाली, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
हाँ, ये सीधे मुद्दे की नब्ज पकड़ लेती है। और वो सामाजिक समझौते का फॉर्मूला, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी सारी शक्ति को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखता है।
ये दिखाता है कि समाज में शामिल होना एक एक्टिव चॉइस है, एक गिव एंड टेक है।
और बेशक वो सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाली लाइन, उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाएगा।
हाँ, ये हमें फ्रीडम के नॉर्मल मीनिंग पर सवाल उठाने को कहती है। क्या अनुशासन भी एक तरह की स्वतंत्रता है? सोचने वाली बात है।
और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, स्वतंत्रता का त्याग करना मनुष्य होने का त्याग करना है।
वाह,
ये बताता है कि स्वतंत्रता कोई चीज नहीं जिसे आप छोड़ दें या बेच दें, ये तो आपके इंसान होने की कंडीशन है। गुलामी और तानाशाही के खिलाफ इससे बड़ा मॉरल आर्ग्यूमेंट क्या होगा?
बिल्कुल, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सिद्धांत बड़े पावरफुल हैं।
जी हाँ।
लेकिन क्या हम इन विचारों को आज की जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये सिर्फ किताबी बातें?
मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी राजनीति को समझने के लिए।
कैसे?
जब हम वोट देते हैं या किसी सरकारी पॉलिसी पर बहस करते हैं या न्यूज देखते हैं, तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये सामान्य इच्छा के करीब है? क्या ये वाकई सबके भले के लिए है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए?
और ये भी कि क्या हम सिर्फ वोट देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं?
जी।
या हमें और एक्टिव होने की जरूरत है?
एग्जैक्टली।
ये हमें बेहतर, ज्यादा अवेयर नागरिक बनने के लिए गाइड कर सकता है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ देश के लेवल पर नहीं, छोटी जगह पर भी।
जैसे
मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई टीम प्रोजेक्ट है, क्या सबका गोल क्लियर है? क्या फैसले मिलकर लिए जाते हैं या सिर्फ बॉस की चलती है? आपकी हाउसिंग सोसाइटी के नियम कैसे बनते हैं? क्या सबकी सुनी जाती है? कोई क्लब या एनजीओ है, वहाँ गवर्नेंस कैसी है? रूसो के सिद्धांत यहाँ भी सोचने की दिशा देते हैं।
हाँ, ये बात तो है, और व्यक्तिगत स्तर पर भी शायद।
हाँ, ये सोचने के लिए कि मेरे लिए असली आज़ादी क्या है, क्या सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाना या उन चीज़ों के लिए डिसिप्लिन फॉलो करना जो मेरे लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर है। ये सेल्फ कंट्रोल और जिम्मेदारी का सवाल है।
सही, जैसे किसी सोसाइटी में अगर सब मिलकर तय करें कि कूड़ा सही जगह फेंकना है या रात को 10 बजे के बाद शोर नहीं करना है, तो इन नियमों को मानना गुलामी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो कलेक्टिव फ्रीडम है जो हमने खुद चुनी है ताकि सब शांति से, आराम से रह सके। एक छोटा सा लोकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी या फ्रीडम, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो बस हैं, दी हुई हैं।
नहीं,
इन्हें लगातार कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, हम सबकी सहमति से, हमारी एक्टिव भागीदारी से। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं।
और मेरे लिए स्वतंत्रता की वो गहरी समझ कि ये सिर्फ बाहरी बंधनों का न होना नहीं है, बल्कि खुद पर शासन करना है, सेल्फ गवर्नेंस, उन उसूलों के तहत जीना जिन्हें हमने खुद एक कम्युनिटी के तौर पर अपने लिए सही माना है। ये एक जिम्मेदारी वाली आजादी है।
तो संक्षेप में कहें तो रूसो हमें याद दिलाते हैं, असली ताकत जनता में है, सच्ची आजादी सेल्फ गवर्नेंस है, और डेमोक्रेसी से वोट देना नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला नागरिक कर्तव्य है, एक्टिव सिटीजनशिप।
बिल्कुल, रूसो की किताब आज भी एक चुनौती है। ये हमें हमारी कंफर्टेबल उदासीनता से झिंझोड़ती है और पूछती है, क्या हम सच में एक न्यायपूर्ण, एक जस्ट समाज बना रहे हैं, और इसमें हमारी भूमिका क्या है?
पर एक सवाल मेरे मन में अब भी घूम रहा है इस चर्चा के बाद। रूसो ने तो आमने सामने बैठकर बहस करने वाली नागरिक सभाओं की कल्पना की थी जहां सामान्य इच्छा बन सके।
हाँ, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन।
आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम सब अक्सर अपने अपने फ़ोन में अपने अपने सोशल मीडिया के इको चैम्बर्स में बंद हैं, क्या सच्ची सामान्य इच्छा बन भी सकती है? या हम पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये सोचने वाली बात है ना?
बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है आज के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।